ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये प्यारा मंत्र आप लोग इस परिसर में लगातार सुन रहे होंगे, राइट? जिससे मन तन सब शांत शुद्ध पवित्र होते चल रहे होंगे और आपका मन भी आनंदित होता चल रहा होगा। एम आई राइट? कौन कौन बहुत शांति और बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं, जरा हाथ उठाएंगे प्लीज। वाह, बहुत सुंदर, आप सबने हाथ उठाया। एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए ही जोरदार ताली बजा लें, क्योंकि आज संसार में हर एक व्यक्ति शांति और खुशी की ही तलाश में है, राइट? हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, खुशी हो। मैं व्यक्तिगत रूप से और आप भी व्यक्तिगत रूप से अब तक किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिले होंगे जो अपने जीवन में दुख चाहता हो, अशांति चाहता हो, परेशानी चाहता हो, राइट? लेकिन विडंबना ये है कि हर एक चाहना तो यही रखता है कि मेरी लाइफ में खुशियां ही खुशियां हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारी खुशी गुमसी हो गई है, राइट? जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे तनाव हैं, इतने सारे कॉम्पिटिशंस हैं, इन सब से जूझते जूझते कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी अपनी खुशी से दूर होते चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा सत्र है, इसमें हम अपनी खुशी की तलाश करेंगे, ठीक है? चलें एक यात्रा पे, हैं? वैसे तो आप सब बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, आप सब बड़े खुश लग रहे हैं, संतुष्ट लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें एवरलास्टिंग खुशी देगा। क्योंकि खुशी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेजर ओरिएंटेड और दूसरा होता है हैप्पीनेस ओरिएंटेड। प्लेजर ओरिएंटेड का भाव होता है कि जब तक कर्म किया जा रहा हो, जैसे जब तक हम टेलीविजन देखते हैं, जब तक हम मूवी देखते हैं, जब तक हम पिकनिक कर रहे हैं, जब तक हम अपने दोस्तों के साथ कुछ हंसी मजाक की बातें कर रहे हैं, तब तक खुश हैं। उसके बाद फिर वो चली जाती है, राइट? दूसरा है हैप्पीनेस ओरिएंटेड, अर्थात जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ कर्म करते हैं, किसी को सुकून देते हैं, किसी को खुशी देते हैं, तो वो एवरलास्टिंग खुशी होती है, लंबे समय तक चलती है और ये हमारी वैल्यूज पर बेस्ड होती है। तो हम चाहेंगे कि हम उस एवरलास्टिंग खुशी की बात करें, ताकि यहां, केवल यहां नहीं, क्योंकि यहां आप हैं तो अपने परिवार से, अपनी जिम्मेवारियों से, अपने कारोबार से, आपको घर में अभी चपातियां नहीं बनानी पड़ रही है, भोजन नहीं बनाना पड़ रहा है, राइट? आपको बना बनाया खाना मिल रहा है, आपको बर्तन मलने की जरूरत नहीं है, तो बड़े आनंदित हैं कि वाह मजा आ गया, है ना? तीन चार दिन भाइयों को भी अपने बहुत सारे टेंशन रहते हैं कारोबार के, वो नहीं है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन जो खुशी आप यहां फील कर रहे हैं, यहां अनुभव कर रहे हैं, हमारी ये कामना है कि इस शिविर से, इस परिसर से, इस आध्यात्मिक परिसर से, इस ईश्वर के घर से आप इस खुशी को लेकर के जाओ, और ना केवल आपके पास वो खुशी रहे, लेकिन इस खुशी को आप बांटो, सब तक बांटो प्रसाद की तरह, क्योंकि इसकी आज हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत आवश्यकता है, राइट? चलिए एक एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। आप अपने जीवन के उस पल को याद करें, आंखें बंद करें। चलिए आगे की यात्रा से पहले हम पीछे की यात्रा करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और आप अपने जीवन को पूरी तरह देखें, उस पल को ढूंढें जिस पल ने आपको बहुत खुशी दी है, बहुत आनंद दिया है। देखें कौन सा वो पल था जिसमें मैं बहुत खुश था, बहुत आनंदित था। कोई गीत की पंक्तियां हो सकती हैं जो आपको बहुत खुशी देती हैं, कोई कविता की पंक्तियां हो सकती हैं जो आपको बहुत खुशी देती हैं, या कोई ऐसा प्रसंग जिसे याद करते ही मैं रोमांचित हो जाता हूं, खुश हो जाता हूं, आनंद से लबरेज हो जाता हूं। मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा पल, जिए उस पल को फिर से और उसे अनुभव करें।
मैं कितना एक्साइटेड था, कितना आनंदित था, कितना प्रसन्न था, चारों तरफ का माहौल कितना खुशी से गदगदाया हुआ था। ओके, ओपन योर आईज। आप में से कोई शेयर करना चाहेगा उस खुशी के पल को? कोई गीत की पंक्तियां हो सकती हैं, कोई कविता हो सकता है, या फिर कोई प्रसंग छोटा सा। आप में से कोई शेयर करना चाहेगा आपके खुशी के लम्हों को? जी प्लीज प्लीज। हाँ जी, नहीं आइए सामने आइए, हम आपके दर्शन कराएंगे सभी को। प्लीज कम इन फ्रंट, आइए प्लीज आइए प्लीज आइए। खुशी बांटिए, जिसने आपको खुशी दी है वो खुशी बांटिए, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है, ये सर्वमान्य बात है। प्लीज कम आइए आइए। और भी कोई भाइयों में से, कोई भाइयों में से कोई भी शेयर करना चाहेगा? जी हाँ आइए जी, आप भी आ जाइए। आइए आइए मैम, थैंक यू भाई, इनका स्वागत कीजिए। आप नीचे से ही सुना सकते हैं, कोई नहीं भाई, तालियों से एक बार स्वागत करें। आइए प्लीज, ये माइक माइक यहाँ सामने आ, अपना परिचय दीजिएगा और फिर सुनाइए।
मैं अमृतसर से आई हूँ, चंद्रिका मेरा नाम है। सबसे खुशी का पल वो था कि मेरा बेटा, जिसमें ना थोड़ी दिक्कत थी बचपन से, वो थोड़ा स्टडी में भी मुझे दिक्कत करता था, वैसे भी थोड़ा था, पर जैसे जैसे आगे पढ़ता गया, फिर टेंथ में आया तो उसके 90 से अबव मार्क्स आए, तो बस वो मेरे जीवन का ना सबसे बेस्ट पल था कि मेरे अपने बेटे ने इतने मार्क्स लिए और अच्छी अच्छी बात मुझे करके दिखाई, बस ये था।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी,
मैं शिवेंद्र लुधियाना से। मेरे लिए दो खुशी काम थे। पहले तो ये था जब मैंने ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग की, पर उससे भी ज्यादा पल मेरे था जब मेरी बेटी का 43 रैंक पंजाब PMT में आया। दैट वाज 100% शी विल गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं जानता हूं कि आप सबके पास भी ऐसे खुशी के लम्हे हैं। शुरुआत मैंने इस बात से इसलिए की क्योंकि जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, सुख भी है तो दुख भी है, लेकिन दुख के लम्हों को कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा पकड़ के रखते हैं, उन्हें कहीं ज्यादा तवज्जो देते हैं, उन्हें कहीं ज्यादा याद करते रहते हैं, और दुख के आंसू फिर हमारे थमते नहीं हैं। और जो खुशी के पल हैं, उन खुशी के पलों को हम कम से कम याद करते हैं। लेकिन कल मैं एक बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था कि दो भाई सागर के किनारे चल रहे थे, एक छोटा था एक बड़ा था, दोनों सगे भाई थे। अचानक दोनों में बहस हो गई तो बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ जड़ दिया, तो छोटे भाई ने उसी वहां पे रेत पे लिखा कि आज मेरे भैया ने मुझे थप्पड़ मारा। जब वो दूसरे दिन आ रहे थे, फिर से वहां वॉक कर रहे थे सागर के किनारे, तो सागर की लहरों में नहाते नहाते छोटा भाई फंस गया और बड़े भाई ने जाकर के उसे बचा के बाहर निकाला। तो छोटे भाई ने पत्थर पे लिखा कि आज मेरे बड़े भैया ने मेरी जान बचाई। तो बड़े भाई ने पूछा कि कल जब मैंने तुमको थप्पड़ जड़ा था तब तो तुमने रेत पे लिखा था कि आज मेरे बड़े भैया ने मुझे थप्पड़ मारा, और आज जब मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की तब तुमने इसे पत्थर पे क्यों लिखा? तो छोटे भाई ने बहुत सुंदर जवाब दिया। मित्रों, जो चर्चा हमारी चल रही है उसने कहा जो दुख की घड़ियां होती हैं उसे हमें रेत पे लिखना चाहिए, क्योंकि भैया आप देखो कल जो मैंने लिखा था क्या वो कहीं आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, सागर की लहरें आई और उसे धो दिया, लेकिन जो मेरी खुशी का पल है, जो मेरे सुख का पल है, उसे मैंने पत्थर पे लिखा है, क्योंकि ये हमेशा अमर रहेगा और जब भी मैं इसे देखूंगा तब तब मुझे आपके उपकार की याद आएगी और मुझे खुशी होगी। जीवन के ऐसे सुंदर लम्हों को हम इस चीज से सीख लें कि जो ऐसी चीजें रही हैं जो मुझे कष्ट देने वाली रही हैं, पीड़ा देने वाली रही हैं, तकलीफ देने वाली रही हैं, जरूर उसे रेत पे लिखिए, उसे घर मत बनाने दीजिए अपने अंदर, क्योंकि यदि वो घर बना लेता है तो वो हमें तकलीफ देता रहता है। साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मोर देन 80% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक, मन से उत्पन्न करते हैं हम, क्यों? चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और पास्ट को ढोके चल रहे हैं, इस कारण आज ज्यादा से ज्यादा परेशानियां हैं, इस कारण आज मन की भी बहुत सारी तकलीफें हैं। लेकिन यदि हम सुख के पलों को याद रखते हैं तो हमें आनंद भी देता है और हम दूसरों को भी सुकून प्रदान कर सकते हैं। क्यों हम खुश रहें, ये भी क्योंकि खुशी की बेनिफिट्स बहुत सारी हैं। खुशी हमारी ट्रू नरिशमेंट है, साथ ही हमारी ओरिजिनल क्वालिटी भी और हमारी बर्थ राइट भी। और यदि आप देखें खुशी के जो लाभ हैं वो ढेरों के ढेर हैं। जैसे जो व्यक्ति खुश रहता है उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं दूसरों के साथ। अपने साथ तो रिलेशनशिप अच्छा होता ही है, लेकिन दूसरों के साथ भी उसके जो संबंध है बहुत बेहतर होते हैं। स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा होता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत सुंदर होती जाती है, जिसकी चाहना हम हमेशा रखते हैं कि चाहे हम घर में रहते हैं चाहे कार्यक्षेत्र में रहते हैं हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। साथ ही यदि कोई जीवन में समस्या आती है सहज रूप से वो लोग उसका समाधान निकाल पाते हैं जो हल्के रहते हैं, खुश रहते हैं। और साथ ही खुशी इसलिए भी क्योंकि खुश व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है और साथ ही शांत रहता है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है, अब मैं आप लोगों के पास आना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब खुशी की तलाश में हैं, हम सब जानते हैं कि बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे एक समस्या आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या होगा, व्हाट इफ समवन पास्ड अ नेगेटिव कमेंट ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस। यदि मैं काला हूं, यदि मैं नाटा हूं, यदि मेरी हाइट बहुत है या कुछ भी मेरे अंदर कुछ ऐसी शारीरिक कमी है और उसे लोग बार बार पॉइंट आउट करते हैं तो क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा?
पार्डन, रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज।
यदि मेरे फिजिकल अपीयरेंस को, मतलब मेरे शरीर में कुछ कमी है, मान लो मैं नाटा हूं, मान लो मैं काला हूं, मान लीजिए मैं बाल्ड हो गया, गंजा हो गया, मान लीजिए मेरी तोंद बाहर आ गई, अब बार बार मेरे इस शारीरिक भाव को लेकर के लोग पॉइंट आउट करते हैं। कोई एक बंदा है जो बार बार कहता है कि तू तो गंजा हो गया, तेरी तो तोंद निकल गई, तू तो बहुत मोटा हो गया है, तू अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार यदि कोई ऐसा कहता है क्या होगा?
नहीं, मैं अपने आप में तो सेटिस्फाई हूं ना, वो लोग करते रहे कमेंट, मैं अपने आप को सेटिस्फाई हूं जो मेरी कंडीशन है, व्हाटएवर इट इज, आई शुड एक्सेप्ट इट।
ओके, आप एक्सेप्ट करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति सर।
वो तो उनकी प्रवृत्ति जो दिया गया है वो तो रहेंगे ही, उस पर हमें कुछ एहसास नहीं होगा मुझे।
ओके, चलिए हमें कोई एहसास नहीं होगा, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? बार बार मैं आपके सामने आता हूं कहता हूं कि तू तो ऐसा है, सर क्या होगा आपका रिएक्शन?
कोई एहसास नहीं होगा।
आपको कोई एहसास नहीं होगा, वेरी नाइस। इस परिसर में आके आप सब फरिश्ते से हो गए हैं, वेरी गुड सर।
उसको ये चीजें बार बार बोलने से उसको निगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा आती है, पॉजिटिव पॉइंट बहुत कम लेते हैं, निगेटिव पॉइंट ज्यादा लेता है। उसको अपने आप को खुद एहसास करने का, जो भी हूं मैं ठीक हूं, वो परमात्मा जैसे रखता है उसी में खुश रहना चाहिए।
बार बार सुनने से उसको गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा और निगेटिविटी आएगी उसमें।
बात ये आई कि ये यदि कोई बार बार कहता है, हमारे यहां जितने भी भाई बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत सुंदर पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि चलो जो है एक्सेप्ट हमने कर लिया, हम कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, या थोड़ा सा मन में थोड़ा सा नेगेटिव भाव आएगा या नहीं आएगा जरा हाथ उठाएंगे। यदि कोई मुझे बार बार टोक रहा है क्या मेरे मन में नेगेटिव भाव आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, कम टू द सेकेंड सिचुएशन। हम खुशी की तलाश में निकले हैं मित्रों, और आप जानते हैं कि हमेशा ऐसा होता है, हमारे आसपास सिचुएशंस आती रहती हैं, उनमें से कुछ सिचुएशंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। दूसरा सिचुएशन आपके सामने है, व्हाट इफ यू फेल टू डू एन इजी टास्क 5 times। यदि कोई बहुत ही सरल सा काम है उसे भी करने में मैं 5 बार असफल हो गया। ओके, चलो मुझे बॉस को कुछ रिपोर्ट करना था, उस रिपोर्ट को बनाने में मैं ऐसा बना कि 5 बार मैं असफल हो गया, या फिर कोई बहुत ही सरल सा काम था, घरेलू काम था, 5 बार मैंने करने की कोशिश की लेकिन मैं उसमें असफल हो गई, मैं क्या रिएक्शन होगा?
कॉन्फिडेंस लूज होगा।
कॉन्फिडेंस लूज होगा,
डर लगने लगेगा वो करने से, आगे से डर लगने लगेगा उस चीज को रिपीट,
उस चीज को करने से डर लगने लगेगा कि अरे मैं बार बार फेल होती जा रही हूं, पता नहीं फिर से करूंगी तो फेल ना हो जाऊं। मैम,
मैं कोशिश करती रहूंगी।
लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी, इनके लिए तालियां कि कुछ भी हो जाए मैं कोशिश करती रहूंगी, बहुत सुंदर। हाँ जी, ये दूसरी सिचुएशन है। एक ऐसा हुआ कि मैं बार बार, 5 बार, कम से कम 5 बार मैं हार चुकी हूं एक काम को करते हुए। जी,
मैं सिचुएशन को एस्केप करना लगूंगी।
आप सिचुएशन को एस्केप करेंगी, और भी कोई? जी,
लूज हो जाएगा बहुत,
मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, राइट। तो सेंस ये आया कि यदि बार बार मैं असफल हो रही हूं मेरी खुशी गुम हो जाएगी। यदि मेरी खुशी गुम होगी, जो ऐसा सोचते हैं वो जरा हाथ उठाएं, बार बार यदि मैं असफल हो रहा हूं तो मेरी खुशी गुम हो जाएगी। बी प्रैक्टिकल, मेरी खुशी गुम होगी, राइट। थैंक यू वेरी मच। तीसरा सिचुएशन आपके सामने है, व्हाट इफ समवन कम अप ऑन द स्टेज एंड इंसल्टेड यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन फॉर नो मिस्टेक ऑफ योर्स। आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा स्टेज पे आते हैं और वो आपका इंसल्ट करते हैं। मैं जैसे स्टेज पे अभी भाषण कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, आप सब स्टेज पे रहते होंगे, बातें करते होंगे, मंच पे जाते होंगे। क्या होगा यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है स्टेज पे, मैंने कोई गलती नहीं की है और वो मेरा इंसल्ट करता है, मुझे गालियां देता है, मुझे अपशब्द कहता है? सर,
कोई गालियां नहीं देता, क्यों गालियां दे?
क्यों गालियां देगा, लेकिन वो दे रहा है जी।
हमारा भी थोड़ा सा होगा कि
हो जाएगा कि भाई काहे गाली दे रहा है यार, कुछ किया नहीं है मैंने। सर,
आत्मसम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, और अगर ऐसा स्थिति आई तो मैं उससे संबंध काटना ज्यादा पसंद करूंगा।
जी जी, मेरा आत्मसम्मान ज्यादा बड़ी चीज है। यहाँ से जी सर,
मैं उसको धन्यवाद करूंगा, मेरी परीक्षा ले रहा था करके।
तालियां इनके लिए, बस धन्यवाद देंगे ये कि भाई तुमने परीक्षा ली। जी पीछे से एक और लास्ट सर।
मैं उसको भी धन्यवाद करूंगा, भाई ने कहा वैसा ही।
जी जी, ये धन्यवाद करेंगे भाई, इनके लिए भी तालियां। ये बहुत बड़ी बात है कि हम धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल हो पाता है? आज इस परिसर में आप बैठे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा परिसर है, बहुत आनंद आ रहा है आपको, मन शांत है, आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद दूंगा कि चल यार तूने गाली दी। लेकिन गाली दे रहा है तो क्या दिल से धन्यवाद निकलेगा? अच्छा ये बताएं, अब एक चॉइस हमारे हाथ में है या नहीं है? डू वी हैव चॉइस कि मैं खुश रहूं या दुखी रहूं? हमारे पास चॉइस है? कितने समझते हैं कि हमारे पास चॉइस है कि हम सुख खुशी खुश में रहें या फिर दुखी हो जाएं? थैंक यू। खुशी मेरे हाथ में है या दूसरे के हाथ में? जो समझते हैं खुशी मेरे हाथ में वो जरा हाथ उठाएं। थैंक यू वेरी मच। चॉइस मेरे हाथ में है, इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। ये केवल कहने सुनने की बात नहीं है, लेकिन इस पर गहराई से हम विचार करें कि क्या सचमुच मेरी खुशी या मेरा दुख, मेरा गम मेरे हाथ में है या नहीं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। हिटलर से आप सभी अवगत हैं। हिटलर यहूदियों का सबसे बड़ा शत्रु था, सबसे बड़ा दुश्मन था। वो ये किया करता था कि यहूदियों को पकड़ के एक कैंप में डाल देता था और फिर बारी बारी से उनको गैस चेंबर में डाल करके मारा करता था। उस कैंप में विक्टर फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति था, जिसके पिता, जिसकी पत्नी, जिसके बच्चों को भी हिटलर ने कैद कर रखा था। विक्टर फ्रैंकलिन के सामने ही उसके पिता को गैस चेंबर में डाल के मार दिया गया, ये उसने अपनी आंखों से देखा। नेक्स्ट डे उसकी पत्नी को भी गैस चेंबर में डाला गया, उसको मार दिया गया, ये भी उसने अपनी आंखों से देखा। लेकिन उसने अपने मन में एक थॉट, बहुत स्ट्रांग थॉट रखा था, ये मेरे ऊपर है कि मैं सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता हूं। दो चीजें हैं, या तो मैं बहुत दुखी हो जाऊं, परेशान हो जाऊं, गमजदा हो जाऊं, सिचुएशन ऐसी है, मेरे सामने मेरे पिता मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है बिना किसी रीजन के, यदि वो नेचुरल डेथ होता मुझे दुख नहीं होता, लेकिन एक तानाशाह मेरी आंखों के सामने उन्हें मार रहा है, मुझे दुख होगा। लेकिन विक्टर फ्रैंकलिन ने एक विचार अपने पास रखा कि इट इज माय चॉइस, मुझे जीना है, खुश रहना है और यहां से निकलना है। जबकि उसे पता है कि वो कैद में है और वन बाय वन सबको मारा जा रहा है, स्टिल ही हैड दिस थॉट कि मुझे खुश रहना है, जीवित रहना है, यहां से निकलना है, अपने मन की स्थिति को मुझे स्टेबल रखना है। नेक्स्ट डे उसके बच्चों को भी गैस चेंबर में डाला गया, उसे भी मार दिया गया अगले दिन उसकी बारी थी, तब तक भी उस व्यक्ति ने अपने पास ये थॉट रखा, मुझे हमेशा खुश रहना है, स्टेबल रहना है, जीवित रहना है और यहां से निकलना है। अगले दिन जब उसकी बारी आई, उसे जब बाहर निकाला गया तो देखा कि वहां का जो माहौल था थोड़ा सा हलचल में आ गया, जो गार्ड्स थे आपस में लड़ने लगे, और इस मौके को देख के विक्टर फ्रैंकलिन उस ट्रक पे चढ़ गया जिसपे लाशों को लादा जा रहा था। वो वहां जाकर के लेट गया। अब ट्रक गई जहां पे लाशों को फेंका जाता था, इनको भी उनके साथ फेंक दिया गया। ये वहां से उठे और दूसरे देश चले गए और इन्होंने एक सिद्धांत दिया संसार को, चॉइस ऑफ फ्रीडम। चॉइस ऑफ फ्रीडम जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये मेरी चॉइस है कि मैं अपने जीवन को कैसे डिजाइन करना चाहता हूं, ये मेरी चॉइस है कि मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूं, ये मेरी चॉइस है कि मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं शांत रहना चाहता हूं, मैं सफलता चाहता हूं, और चाहे कितनी भी बार मैं गुरु मुझे आगे बढ़ते जाना है, इट्स माई चॉइस। है या नहीं मेरे हाथ में? जब मैं बीमार पड़ता हूं, दो चॉइस हैं, या तो मैं बहुत दुखी हो जाऊं, परेशान हो जाऊं, रोता रहूं और रो रो करके मैं उस दौर को गुजारूं, और दूसरा मेरे पास चॉइस ये है कि मैं हल्के रहूं, मन को शांत रखूं, अच्छे विचारों में रखूं, खुश रहूं और ये सोचूं कि जैसे ही बादल आते हैं चले जाते हैं, बीमारी आई है चली जाएगी, कौन सी स्थिति बेहतर है, और ये दोनों चीज मेरे हाथ में है ना। मैं असफल होता हूं, मैं ये भी सोच सकता हूं कि बार बार यार असफल हो रहा हूं, छोड़ो मुझसे नहीं होगा, मैं क्विट करूंगा, बैठ जाऊंगा, और दूसरा यह भी हो सकता है कि मैं बार बार उसके लिए प्रयास करता रहूं। चॉइस मेरे पास है? है, दोनों चीजें हैं, या तो भाग लो या भाग लो। जो भाग लेते हैं वो विनर बनते हैं, जो भाग लेते हैं वो खुश रह पाते हैं, वो आनंदित रह पाते हैं। तो ये हमारी चॉइस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कैसे, इसे हम आगे की स्लाइड से भी समझते चलेंगे, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारी लाइफ के। जीवन की भाग दौड़ में हम बहुत ज्यादा बाहर की ओर भाग रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो जो अंदर की शांति है, अंदर की खुशी है, प्रसन्नता है, वो कहीं मिस होती जा रही है। एक बार भगवान ने नारद जी से पूछा, कहा नारद तुम पूरी तीनों लोकों का भ्रमण करते रहते हो, तुम बताओ मनुष्यों की कौन सी ऐसी आदत है जो तुमको बड़ी विचित्र सी लगती है। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैंने देखा है कि जो इंसान है ना, अपना सुख, अपना चैन, अपना स्वास्थ्य, अपना सब कुछ धन कमाने में लगा देता है, और जब वो धन कमा लेता है, इनफ धन कमा लेता है, और जीवन के अंतिम दौर या पड़ाव पे पहुंच रहा होता है, तो उसी धन का 90% इस्तेमाल फिर से स्वास्थ्य पाने में, सुख पाने में और चैन पाने में लगा देता है। वो उसके पास जो ओरिजिनल संपत्ति है, जो शांति है, खुशी है, सुकून है, उसे वो ताक पे रख करके पूरे जीवन भागता रहता है, और फिर से जो अचीव करता है उसे उस चीज को पाने में लगाता है जिस चीज को उसने ताक पे रख दी थी। ये एक अजीब सी आदत है जिसपे हम सबको विचार करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसपे आज हम लोग विचार करने वाले हैं कि कैसे हम अपने जीवन में एवरलास्टिंग खुशी को पाएं, इजी चीज है, ABCD के रूप में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं इसे। द फर्स्ट वन इज आर एटीट्यूड। ए इज फॉर एटीट्यूड, मैं कैसे सोचता हूं, बिकॉज एटीट्यूड डिटरमाइंस अल्टीट्यूड इन लाइफ। मैं अपनी लाइफ में कितनी ऊंचाई तक जा पाता हूं, कितनी बुलंदी तक जा पाता हूं, यह डिपेंड करता है कि मैं कैसे सोचता हूं या चीजों को मैं कैसे देखता हूं। जैसे सिचुएशंस के बारे में हमने बात की थी, उन सिचुएशंस पे हम आएंगे, लेकिन ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को आप देखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आइसबर्ग के बारे में आप जानते हैं कि आइसबर्ग का केवल 10% जो पार्ट होता है वो सागर के ऊपर होता है, और शेष जो 90% पार्ट होता है आइसबर्ग का वो नीचे होता है सागर के। सिमिलरली हमारे जीवन में यदि हम जिन चीजों को महत्व देते हैं, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो स्किल है, चाहे वो हमारा बिहेवियर है, चाहे वो हार्ड वर्क है, दिस ऑल थिंग्स आर, ये सब क्या है, बाहरी चीजें हैं, राइट? हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स, हमारा हार्ड वर्क जो हम करते हैं सक्सेस के लिए या खुशी के लिए या जीवन में कुछ अचीव करने के लिए, ये आउटर चीज है जिस पे हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और यदि हम इन चीजों को ए टू जेड जो हमारे अल्फाबेट हैं, इसे हम नंबर दें, नंबर असाइन करें, तो आप पाएंगे कि नॉलेज 96% आता है, स्किल 82, हार्डवर्क 98। लेकिन यदि आप अपने जीवन को सर्वांगीण रूप से जीना चाहते हैं प्रसन्नता पूर्वक, तो आपको उस पार्ट पे वर्क करना बहुत जरूरी है जो एटीट्यूड कहलाता है। ये 100% करता है हमारी लाइफ को। बिकॉज आप देखें किस प्रकार ये करता है, दो प्रकार के एटीट्यूड हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। हमने जो तीन पहले के सिचुएशंस देखे थे, उन सिचुएशन में ज्यादातर हमने ये पाया कि हम इरिटेट होंगे, अशांत होंगे या फिर दुखी जरूर होंगे, या टिट फॉर टैट की नीति अपनाएंगे जो ज्यादातर हम बाहर दुनिया में करते हैं, राइट? लेकिन यदि मैं एटीट्यूड वाइज बहुत पॉजिटिव हूं, फर्स्ट सिचुएशन देखें, व्हाट इफ समवन पास द नेगेटिव कमेंट ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस। आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो बचपन से लंगड़ा था, बचपन से जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। इसके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के बचपन से ही लोग कमेंट पास करते रहे थे। नाम इनका निक है। 19 साल के जब ये हुए, बचपन से सुनते आ रहे थे लोगों की बातों को, इन्होंने ठाना मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाऊं जो लोग मुझे कुछ कह रहे हैं उनकी बोलती भी बंद हो और साथ ही वो मुझसे कुछ सीख सकें, और दूसरा ये हो सकता है कि मैं जीवन भर लोगों की उन कमेंट्स को सुनता सुनता परेशान होता रहूं। इन्हें आप जानते होंगे, ये आज दुनिया के बेहतरीन मोटिवेशनल गुरुओं में एक हैं। 19 साल की उम्र से ही इन्होंने मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ इनके कई डीवीडीज, कई बुक्स लॉन्च हैं। दुनिया भर में ये भ्रमण करते रहते हैं बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारे फिजिकल अपीयरेंस को लेकर जब कोई कमेंट पास करता है, हम तुरंत इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, खुशी गुम हो जाती है। लेकिन एक एग्जांपल, एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसने उन चीजों को पॉजिटिवली लिया अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और साथ ही उसने वो करके दिखाया जिसको कहते हैं कि इतनी शांति से मेहनत करनी चाहिए हम लोगों को कि हमारी सफलता शोर मचा दे, हम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, लेकिन इतनी शांति से अंदर गहराई से अपना प्रयास और पुरुषार्थ करते रहें कि वो लोग जो मेरे ऊपर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं वो मुझे फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाएं। दूसरा जो हमारा सिचुएशन था कि यदि मैं बार बार असफल हो रहा हूं, कम से कम 5 बार की बात, हमारी बहनों ने इस बात को स्वीकार किया कि यदि मैं बार बार असफल हो रही हूं तो मेरा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा, राइट सिस्टर? आपने यही कहा था, मेरा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा, शायद मैं गिव अप कर दूं। हमारी एक बहन ने कहा था कि हम प्रयास करते रहेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन, हम सब इन्हें जानते हैं, एक ऐसे शख्स जिन्होंने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयास किया और वो असफल हुए। आज जिस बल्ब की रोशनी के नीचे हम बैठ करके आज के इस सत्र में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये तभी संभव था जब इस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। आमतौर पे 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 50 बार असफल होने के बाद हम बैठ जाते हैं, लेकिन यदि एटीट्यूड हमारा बहुत पॉजिटिव है तो हम बैठेंगे नहीं, लेकिन एग्जाम्पल हम सेट करेंगे। ये भी हमें सीख लेनी है, क्योंकि खुशी हमारे इस अंदर की चीज पे बहुत डिपेंड करता है। एंड थर्ड सिचुएशन क्या होगा जब मंच पे आकर के ही मुझे कोई अपमानित कर रहा है। अब्राहम लिंकन हमारे लिए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है मित्रों। हमने इस बात को एक्सेप्ट किया दिल से कि यदि कोई मंच पे मेरे प्रियजनों के बीच या बहुत सारे लोगों के बीच जब मुझे अपमानित करता है, मैं हर्ट होता हूं, मैं दुख महसूस करता हूं, और साथ ही मेरी खुशी भी चली जाती है, राइट? अब्राहम लिंकन के जीवन का एक प्रसंग मैं आपके सामने प्रैक्टिकल चीजें रखना चाहता हूं। जब ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? जस्ट ये चीज आपके सामने रखने के लिए मैं इस बात को रख रहा हूं। जैसे ही अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति चुने गए और जब वो ओथ लेने के लिए, शपथ लेने के लिए जा रहे थे, बहुत सारे सीनेटर्स वहां पे बैठे हुए थे, जैसे आप सब बैठे हुए हैं, एक सीनेटर खड़ा हुआ और उसने कहा कि मिस्टर लिंकन, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिताजी हमारे परिवार वालों के लिए जूते बनाया करते थे, इनके फादर मोची थे, जूते बनाया करते थे। तो सीनेटर खड़ा हुआ और अपमानित करने के भाव से सबके सामने उन्होंने लिंकन को यह बात कही कि मिस्टर लिंकन, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपके फादर हमारी फैमिली के लिए जूते बनाया करते थे, अपमानित करने के लिए सबके सामने। अब व्यक्ति या तो बहुत इरिटेट हो सकता है, दुखी हो सकता है, लेकिन एटीट्यूड, लिंकन महोदय ने कहा, मैं जानता हूं मेरे पिताजी जूते बनाया करते थे और मैं ये भी जानता हूं कि वो बहुत अच्छे जूते बनाया करते थे, कोई कंप्लेन किसी को नहीं थी, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई कंप्लेन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे भी जूते बनाने आते हैं, मैं आपको जूते बना करके दे सकता हूं। जो कला मेरे फादर के पास थी वही कला मेरे पास है और मुझे पता है कि मेरे फादर बहुत अच्छे जूते बनाया करते थे। स्टिल यदि आपके पास कोई कंप्लेन है आप मुझे बता सकते हैं, मुझे भी जूते बनाने आते हैं। सी द एटीट्यूड, ये एटीट्यूड यदि है प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशंस के सामने तो हम अपनी खुशी को गुम नहीं होने देते। लेकिन जब कभी नेगेटिविटी है हमारे पास, हमारा एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है चीजों को लेकर के, बातों को लेकर के, तो हम अच्छी बातें होते हुए भी उसमें दुख की बातें निकाल लेते हैं। एक व्यक्ति रो रहा था, उसका एक मित्र आया कि भाई क्यों रो रहा है तू? उसने कहा कल मेरे अंकल की ना मृत्यु हो गई, वो 90 साल के थे और साथ ही उन्होंने मेरे लिए एक बंगला और 5 करोड़ रुपए छोड़े हैं। तो मित्र ने कहा कि इसमें फिर रोने की क्या बात है, उम्र भी उनकी हो गई थी 90 साल की और उन्होंने 5 करोड़ रुपए और एक बंगला तुम्हारे लिए छोड़ा है। उस रोते हुए व्यक्ति ने और ज्यादा रोते हुए कहा कि मेरे और एक अंकल थे, 3 मास पहले उनका भी देहांत हो गया, वो 100 साल के थे, उन्होंने 50 करोड़ रुपए और 5 किलो सोना मेरे लिए छोड़ा है। मेरे एक और अंकल थे जो 6 मास पहले उनका देहांत हुआ, वो 120 साल के थे और उन्होंने मेरे लिए 20 करोड़ रुपए छोड़े और साथ ही बहुत बड़ी दुकान छोड़ी। अब मित्र से रहा नहीं गया, बोला यार सब चीजें तो ठीक है, एक 90 साल के थे, एक 100 साल के थे, एक 120 साल के थे और सबने तेरे लिए इतना सारा माल छोड़ा है, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? तो उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे अंकल की डेथ हो गई है, मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि अब कोई और अंकल नहीं बचा है। इतना कुछ होते हुए भी हम अपनी नेगेटिव एटीट्यूड के कारण दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और साथ ही साथ जो चीजें हमें प्राप्त है उस प्राप्त चीज का आनंद नहीं ले पाते। एक और व्यक्ति बहुत परेशान था, दुखी था, उसका भी मित्र आया, उसने कहा कि क्यों यार इतना दुखी रहता है तू? तेरे पास तो इतनी संपत्ति है कि तेरी 7 पुश्तें खा सकती हैं, 7 पीढ़ियां खा सकती हैं, फिर क्यों तू दुखी रहता है? तो व्यक्ति कहता है इसीलिए तो दुखी रहता हूं कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। 7 तक की तो मैंने व्यवस्था कर दी है, लेकिन अब मेरे दुख, चिंता और परेशानी का विषय यह है कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। हमें जो प्राप्त है उस प्राप्त का सुख ना लेते हुए यदि हमारे एटीट्यूड में नेगेटिविटी है तो हम उस चीज को देखते हैं जो चीज हमें नहीं देखनी चाहिए। बनिस्पत इसके बॉम्बे में मेरी ट्रेन लेट थी, मैं बॉम्बे में था, वहां एक लंगड़ा भिखारी, उसका एक पैर भी नहीं था और एक हाथ भी नहीं था, लेकिन वो बहुत सुखी था, बहुत मुस्कुरा रहा था, जो उसको कुछ दे रहा था उसके लिए भी वो दिल से दुआएं दे रहा था और जो नहीं दे रहा था उसको भी दिल से दुआएं दे रहा था, मुस्कुरा रहा था। मेरी ट्रेन लेट थी, मैंने उसके पास जाके पूछा कि तुम इतने प्रसन्न कैसे लग रहे हो, एक हाथ भी नहीं है, एक पैर भी नहीं है, मेरे पास कुछ खाने की चीजें थी मैंने उनको दी। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही मित्रों, जिसपे हम सबको विचार करना है, जिस चीज से मैं रिलेट कर रहा हूं इसे। उसने ये कहा, जब मैंने ये कहा कि क्या भगवान से तुम शिकायत नहीं करते कि भगवान ने तुम्हें एक हाथ नहीं दिया, एक पैर नहीं दिया, भिक्षुक भी बना दिया, कल क्या होगा वो पता नहीं है, भिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसने एक बहुत सुंदर बात कही, उसने ये कहा कि मैं ये नहीं देखता कि भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है, मैं ये नहीं देखता कि जीवन ने मुझे क्या नहीं दिया है, मैं ये देखता हूं कि भगवान ने, ईश्वर ने मुझे क्या दिया है। जो दिया गया है उस चीज को जब मैं देखता हूं तो मेरे अंदर से शुक्रिया निकलता है कि ईश्वर तुमने मुझे इतना सुंदर परिवार दिया है, इतना सुंदर घर दिया है, इतने सुंदर बच्चे दिए हैं। जब मैं ये देखता हूं वो मेरी प्रसन्नता का कारण है। और कई बार ये होता है कि हम अप्राप्त के पीछे भागते भागते प्राप्त की खुशी को खो देते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, जरूर जरूर, मैं उस पर आ ही रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस एक ही बात हम कर रहे हैं मित्रों, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस भाव को लेकर के हो जाता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से अपने एटीट्यूड को रखते हैं। बिकॉज ये सीधे सीधे हमारी खुशी से और सीधे सीधे हमारे दुख दोनों से ही जुड़ा हुआ है। जब हम अच्छाई की ओर ध्यान देते हैं तो सहज रूप से हम अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। एक सुंदर सा एग्जाम्पल, सी किस प्रकार एटीट्यूड वर्क करता है। एक यंग मच्छर पहली बार उड़ान भरता है और जब वो उड़ करके वापस आता है अपने घर तो पिताजी पूछते हैं कि बेटा आज कैसी रही तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट, कैसा रहा? तो वो यंग मच्छर कहता है, पिताजी मजा आ गया आज तो। कैसे मजा आया? पिताजी मैं जहां भी गया ना लोगों ने ताली बजा के मेरा स्वागत किया। वो जहां भी जाता था लोग उसके पीछे भागते थे कि कैसे इसको तड़ 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 मारने की कोशिश करते थे कि कहां मिल जाएंगे। लेकिन उसने इस चीज से क्या लिया, पिताजी मजा आ गया आज तो पहली उड़ान में। जहां पे भी मैं गया लोगों ने ताली बजा के मेरा स्वागत किया। यदि वो ये सोचता कि कैसे लोग हैं दुनिया वाले, मुझे तो मारने के ही पीछे पड़े हुए थे, पता नहीं मेरा क्या होता, ईश्वर ने मुझे बचा लिया, पिताजी अब कल से मैं नहीं जाऊंगा, क्या वो लाइफ को एंजॉय कर पाता, क्या वो खुश रह पाता? बिल्कुल नहीं। वैसे ही एक गृहस्थी एक सन्यासी के पास गाय छोड़ जाता। शिष्य भागा भागा आता, कहता गुरुजी एक गृहस्थी आया था उसने गाय छोड़ी हमारे पास। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, हमें रोज दूध पीने को मिलेगा। अब एक हफ्ते के बाद वो गृहस्थी वापस आया, अपना गाय लेके चला गया। अब शिष्य फिर भागा भागा गया गुरुजी के पास, कहा गुरुजी वो तो जो गृहस्थी था वो अपनी गाय लेके चला गया। गुरुजी ने कहा अच्छी बात है, रोज रोज गोबर उठाने की जो झंझट थी उससे मुक्ति मिली। सी दोनों सिचुएशन में मैं अपनी खुशी तलाश लूं। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग, दिस इज आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, कि मैं कैसे सोचता हूं। ठीक है, एक आप लोगों के सामने एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हम कैसे अपनी खुशी को तलाश सकते हैं। एक यंग लड़का सुबह सुबह उठता है, सुबह का माहौल बहुत सुंदर है, माहौल बहुत खुशनुमा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पक्षी कलरव कर रहे हैं। वो यंग लड़का जॉगिंग करते करते एक मैदान पे पहुंचता है, एक्सरसाइज करता है और एक्सरसाइज करने के बाद ऊपर आकाश की तरफ देखता है। जब वो ऊपर देखता है तो एक चिड़िया उड़ते हुए जा रही होती है, वो ऊपर से बीट कर देती है, गंदगी कर देती है ठीक उसके चेहरे। इतना सुंदर माहौल था, ठंडी ठंडी हवा थी, पक्षी कलरव कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। ऐसे में एक दुर्घटना क्या हो गई, चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी, उसने ऊपर से उसके चेहरे के ऊपर गंदगी कर दी। आप खुदा ना करे यदि आप उसकी जगह होते आपका रिएक्शन क्या होता? हाँ जी, नेगेटिव हो जाता। हम ये सोचते कि यार मैं ही मिला था क्या, इतना बड़ा मैदान दिखाई नहीं दे रहा था, हाँ एकदम निशाना लगा के सीधा मेरे चेहरे पे ही छोड़ा है, हाँ नेगेटिव हो जाता। और क्या रिएक्शन होता हमारा? हाँ जी, दिन खराब हो गया, क्या हुआ आज सुबह सुबह ना एकदम मूड ऑफ हो गया, दिन खराब हो गया। और क्या रिएक्शन होता? हाँ जी, हाँ इंटेंशनली तो नहीं किया बेचारा, लेकिन अब इसकी हालत तो खराब है ना बेचारे की, अब उसने इंटेंशनली नहीं किया, वो उसके लिए तो सारा संसार एक जैसा है। लेकिन इसकी बात हम कर रहे हैं, वो बर्ड कुछ नहीं सोच रही है, वो तो चली गई, जो करना था उसने कर दिया। इट्स अप टू मी, सिचुएशन मेरे सामने है, प्रॉब्लम मेरे सामने है, सिचुएशन मेरे सामने है, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन, रिएक्शन क्या होगा बीच वाले? हाँ जी, हाँ जी, ये गुड इंडिकेटर है, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा जाएगा। बड़े शुभ शुभ सोचते हैं सर आप, हाँ ये अच्छा है कि प्रभु आज बड़ा गुड इंडिकेशन मिला है, दिन अच्छा जाएगा, काश ऐसा गुड इंडिकेशन मुझे रोज मिलता रहे। और रिएक्शन क्या होगा हमारा? हाँ जी, जी जी, किसी और ने देखा तो नहीं, आमतौर पे ये होता है, मुझे कैसी भी चोट वोट लगी हो जैसे ही हम गिरते हैं पहले इधर उधर देखते हैं कि यार किसी ने
आ गई, अच्छा देख लीजिए, संभल के रहिएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा हो सकती है। ओके, और क्या रिएक्शन होगा हमारा सिस्टर्स जी? हाँ जी, अच्छा अच्छा सुगुण हुआ, बहुत अच्छा, आप शुभ शुभ सोच रहे हैं, चलो एक अच्छा सुगुण है कि सुबह सुबह कुछ हुआ, और क्या रिएक्शन क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, नेचर को एंजॉय करें, चलिए पहुंच के आगे बढ़ जाए। हाँ सिस्टर पीछे, एक बार और मूड होने को मिलेगा। वाह, हाउ पॉजिटिव यू आर, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच बेटी। आमतौर पे रिएक्शन ये होता है हम लोगों का, जैसे आप सबने भी शेयर किया, हम जी हाँ, मेरा बस चलता ना तो मैं उसे मार देता, यदि वो मेरे हाथ में आ जाती मैं उसका उसकी जो गर्दन है वो मरोड़ देता, मैं ही मिला था क्या, आदि आदि इत्यादि। हम बहुत निगेटिव होते, बहुत इरिटेट होते, हमारी बहनें थोड़ी पॉजिटिव हैं, उन्होंने अच्छी बात कही कि चलो मुंह पोंछ लेंगे या मुंह धोने का अवसर मिला या कुछ गुड इंडिकेशन है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता हम इरिटेट होते, राइट। एक बार मैं करा रहा था ये एक्सरसाइज, मैंने कॉलेज में पूछा बच्चों से कि ऐसा मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा, सभी लोग बिल्कुल ही जो कमेंट्स आप दे रहे हैं वही कमेंट्स उन्होंने भी पास किया, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल ऐसा नहीं था उस लड़के का, ये हमें सीखना है। रिएक्शन बिल्कुल उसका ऐसा नहीं था, इस घटना के बाद, इस दुर्घटना के बाद भी उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया। ऐसी घटना जिसपे हम सब एक मत से ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, इरिटेट होंगे, काश वो मेरे हाथ में लग जाती, मैं उसकी गर्दन मरोड़ देता, आदि आदि इत्यादि, लेकिन इस घटना के बाद भी उस लड़के ने ऐसा क्या सोचा कि उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया। हाँ जी, हाँ, आंख आंख पे नहीं पड़ी, शुक्रिया भगवान तेरा, ऐसा। हाँ, मैं वो कॉलेज की बात बता रहा था, फिर वो कॉलेज के एक लड़के ने पीछे से खड़े होकर कहा, जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो सर मैं बताना चाहता हूं, मैंने कहा बताओ, उसने कहा सर इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दिया होगा कि हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मेरा मुंह नहीं खुला था। यदि मेरा मुंह खुला होता आज तब तो मुझे उसके टेस्ट का भी पता चल जाता कि उसका टेस्ट कैसा क्या ऐसा सोचे। हम सबके जीवन में ऐसी सिचुएशंस, ऐसी बातें प्रैक्टिकली आती हैं, क्या ऐसा हम सोचें कि उस नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी मेरा मन आनंदित रहे। हम आनंद की तलाश में निकले हैं, खुशी की तलाश में निकले हैं। हाँ जी, हाँ बीट ही तो पड़ी, बड़ा पत्थर तो नहीं पड़ा। हाँ जी उसकी, हाँ जी हाँ जी, जी 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 जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और भी कोई? हाँ जी, बहुत सुंदर, बेटी बहन के लिए तालियां बजाएं। उसने सचमुच यही बात कही, सामने से भी हमारे भाई ने कहा, उसने ये कहते हुए ईश्वर का धन्यवाद अदा किया, हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने गाय और भैंस को पंख नहीं दिए हैं। यदि गाय और भैंस के पंख होते तो मेरी क्या हालत होती, जरा सोच के देखिए, और यदि उसको डायरिया होता तब तो भगवान मालिक है कि मेरा क्या होता, राइट। सी, क्या है ये? जस्ट एक एटीट्यूड है जिसमें हम चेंज ला रहे हैं, अपने थिंकिंग प्रोसेस में चेंज ला रहे हैं, अपने एटीट्यूड में चेंज ला रहे हैं। सिचुएशन हम सबके लिए वही है, लेकिन यदि मेरे एटीट्यूड में बहुत सुंदर पॉजिटिविटी है, उसकी प्रैक्टिस यदि मैं करता हूं तो सिचुएशन मुझे दुखी नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। इसलिए इस ए पे हम जरूर वर्क करें। बी इज बैलेंस। हम अपने जीवन में बैलेंस अवश्य लाएं, क्योंकि विदाउट बैलेंस ये कहा जाता है कि आप अपनी लाइफ का आनंद नहीं ले सकते, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। बिकॉज जब कभी आप देखते हैं, आप गाड़ी भी चलाते हैं, गाड़ी में चार पहिए होते हैं, या कोई भी चीज होती है उसमें चार पिलर्स होते हैं। हमारे जीवन के भी ये चार पिलर्स हैं जिसे हम फिजिकल, सोशल, मेंटल या स्पिरिचुअल कह सकते हैं। फिजिकल से भाव ये है, यदि मेरा तन अस्वस्थ है,
इन चारों को एक साथ लेते हुए मैं कह रहा हूं, यदि मेरा तन अस्वस्थ है, मैं बीमार हूं, तो भी क्या मैं खुश रह सकता हूं? एक बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए। या सोशल की बात कर लें, यदि मेरे चारों तरफ मेरे जो मित्र हैं, संबंधी हैं या लोग हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूं, उनके साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, क्या मैं खुश रह सकता हूं? तो जीवन में इन चारों चीजों को देखते हुए एसेंस के रूप में यदि बात सामने लाई जाए तो ये, यदि जीवन में समस्या है, यदि जीवन में विघ्न है, परेशानी है, तो भी मैं खुश नहीं रह सकता। एटीट्यूड मेरा बहुत पॉजिटिव है, वो अच्छा है, मुझे हल्का रखेगा, सरल रखेगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा, लेकिन जो प्रैक्टिकली विघ्न सामने आ रहा है उसका क्या? यदि आपको फिजिकली कोई तकलीफ है मेडिटेशन का, या राजयोग में बहुत सुंदर इसके निदान है जो आप कर सकते हैं, जो हम लोग कराते हैं, यदि आप समाधान शो देखते हो, आदरणीय भ्राता जी बहुत सुंदर टिप्स देते हैं। किसी को ऐसा है यहां अभी हॉल में बैठे हुए, किसी को घुटने में दर्द है, हाथ में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, जरा हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएं जरा, जिनको भी तकलीफ है, शर्माइए नहीं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, जिनको भी तकलीफ है जरा हाथ उठाएं। ओके, थैंक यू। हम सब एक मास मेडिटेशन करते हैं, फिजिकल की बात, जिस चीज को मैं कह रहा हूं इसे ज्यादा मैं लंबा तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक मास मेडिटेशन, यदि जीवन में शारीरिक रूप से मुझे कुछ तकलीफ है, एक छोटी सी प्रैक्टिस आप जरूर कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करें और दोनों हाथों को रब करते हुए संकल्प करें, विचार करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। डीपली से फील करें अंदर इस संकल्प को और हाथों को रब करते रहें, हाथों को रब करते रहें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। अब अपनी दोनों हथेलियों को वहां रखें जहां आपको दर्द है, घुटनों में, सिर में, पेट में, कंधे में, जहां भी आपको लगता है, अपने दोनों हथेलियों को रखें, आंखें बंद रखिए, फील करें मेरे हाथों से एनर्जी मेरे शरीर के इस अंग पे जा रही है और मेरा दर्द दूर होता जा रहा है, मैं बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा हूं, हल्का होता जा रहा हूं। फिर से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखें बंद रखिएगा, दोनों हाथें रब करें, फिर से तेजी से अपने हाथों को रब करेंगे और संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। रब करें, पूरे विश्वास के साथ इस विचार को अपने अंदर लाएं, मेरे दोनों हाथों में शक्तियां आती जा रही हैं, बल आता जा रहा है, पावर्स आती जा रही हैं। अब अपने दोनों हाथों को फिर से हथेलियों को आंखें बंद रखिएगा, वहां रखें जहां आपको तकलीफ है, फील करें मेरे हाथों से एनर्जी वहां जा रही है और मेरा दर्द दूर होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, मैं लाइट होती जा रही हूं, बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही हूं, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल हल्का। ओपन योर आईज, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा अपनी फीलिंग, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? दर्द में थोड़ा सा हल्कापन आपको महसूस हो रहा है? जिनको ऐसा लगता है कि हमने जब एनर्जी दी तो जिस स्थान पे थोड़ी तकलीफ थी वो हम हल्का फील कर रहे हैं, वो जरा हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएं जरा। थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत सुंदर सी प्रैक्टिस है जिसे आप कभी भी, मैं एक अपने एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछले साल ओमान में था। अब ओमान अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत जाना जाता है। अब जब हम लोग वहां गए तो उन्होंने बहुत सारे आइटम हमारे लिए बना दिए और
सर्व किया और मतलब जैसे नहीं हम लोग प्यार से खिलाते हैं लो जी, जैसे पंजाब में जाते हैं तो लो जी आलू के पराठे हैं गरम गरम आ रहे हैं, मक्खन भी रख दिया, ये भी, तो जो बेचारा वो नॉर्थ इंडियन नहीं होता साउथ इंडियन होता है उसके लिए अब उनका प्यार भी है और हमने खा भी लिया। तो हमने ओमान में जम के खा लिया, अब जम के खा तो लिया, दूसरे दिन हमारा प्रोग्राम था। अब रात को अचानक पेट में दर्द होना शुरू हो गया, ऐठन होनी शुरू हो गई, बहुत तेज ऐठन, बहुत तेज दर्द। अब वो दर्द ऐसा था कि ना लेटते बन रहा है ना बैठते बन रहा है। रात का 2 बजे है, अब इनको जगाया जाए या डॉक्टर को बुलाया जाए, क्या किया जाए, उनको भी जगाएं वो भी मुश्किल, दूसरे देश में है कहां डॉक्टर के पास जाएं वो भी मुश्किल। अब ये जो प्रैक्टिस है ये एक बहुत ही सुंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस मैंने अभी आपको कराई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवा ना लें, आप दवा जरूर लें, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रैक्टिस आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा रहता है। मुझे ये बात ख्याल में आई जो लगातार प्राता जी सुनाते रहते हैं, मैंने भी अपने दोनों हाथों को रब किया, ये संकल्प किया 7 बार, अपने पेट पे रखा, पहली बार में थोड़ी रिलीफ हुई, दूसरी बार किया आधा वो दर्द चला गया, और तीसरी बार करते ही वो पूरा ही दर्द मेरे पेट का कंप्लीटली वहां से दूर हो गया। और मुझे इस चीज पे सच कहूं तो पहले विश्वास नहीं था कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन जब मेरे सामने ये बात आई तो मैंने ये चीज किया और सचमुच उस चीज ने काम किया। तो मुझे इस चीज से ये विश्वास हुआ कि जब कभी हमें फिजिकल, जिस फिजिकल की हम बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है, यदि हम मेडिटेशन करते हैं और अपने शरीर को एनर्जी देते रहते हैं तो ये चीजें होती हैं। ऐसे हजारों हमारे पास एग्जाम्पल हैं। वैसे ही यदि मन में कोई तकलीफ है, चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है आपको या आपके किसी नजदीकी को, आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जरूर उनको करा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम सोशल, यदि हम परिवार में रहते हैं, कोई विघ्न है परिवार में, या फिर हमारी बिजनेस मंदा चल रहा है, या फिर हम जहां पे वर्क करते हैं वहां पे लोगों के साथ हमारी अच्छी नहीं बनती है, आप मेडिटेशन की कुछ प्रैक्टिसेस 21 डेज यदि आप योग का अभ्यास कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं कैसी भी बड़ी से बड़ी विघ्न है। एक एग्जांपल, दिल्ली के एक सज्जन हमारे यहां आए थे पिछले साल, उन्होंने कहा कि 37 साल से कोर्ट का केस चल रहा था उनका। अब जानते हैं कोर्ट केस मतलब, अब ऐसे में अपनी खुशी को भी बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने ये प्रैक्टिसेस की 21 डेज किए, 22nd डे पे उनका वो केस जो 37 ईयर्स से चल रहा था क्लियर हो गया। कुछ ऐसे लोग जिनके पास जॉब नहीं थे, उन्होंने 21 डेज अच्छे योग का अभ्यास किया, 22nd डे पे उनके पास 4 जॉब के ऑफर लेटर थे। ये एक मिरेकल भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन का सचमुच चमत्कार है जिस पे लास्ट में हम लोग आएंगे। तो जब कभी ये जीवन में आए आप इसका बैलेंस जरूर रखें, और साथ ही जब कभी परिस्थितियां या बातें इस प्रकार से आपके विपरीत जाने लगे तब भी आप जीवन में इस चीज का सुकून ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। लेकिन सोशल में एक चीज का जरूर ध्यान रखें, अनुमान एक ऐसी चीज है जो हमारी खुशी को छीनती रहती है। कई बार हम अनुमान लगाते रहते हैं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं सोचता, वैसा तो नहीं सोचता है, या दो लोग बात कर रहे होते हैं तब भी हम ये सोच रहे होते हैं कि कहीं ये लोग मेरी चुगली तो नहीं कर रहे हैं, मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं। अनुमान, ये अनुमान हमारी खुशी को सबसे ज्यादा छीनता है। वो कहते हैं कि अनुमान एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी। इसलिए अनुमान से ज्यादा सोचने की या व्यर्थ सोचने की आदत से हम अपने आप को मुक्त जरूर रखें। ये जब हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो इसका ध्यान जरूर रखें। एंड सी इज कोऑपरेशन, सहयोग। जब हम दूसरों को देते हैं तो खुशी ऑटोमेटिक मिलती है। लोग कहते हैं कि जो देता है ना वो कभी गरीब नहीं होता, और खुशी ऐसी चीज है, शांति ऐसी चीज है, प्रसन्नता ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा आप दूसरों को देते हैं वो उतना ही ज्यादा ये बढ़ता है, उतना ही ज्यादा बढ़ता है। स्थूल चीजें जब आप देते हैं तो वो घट जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल चीजें ऐसी हैं जिसे आप जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए इस चीज को जरूर अपने ध्यान में रखें कि हमें देते चलना है सुकून, खुशी, सहयोग दें दूसरों को। चलो स्थूल चीजों से हम सहयोग नहीं भी दे सकते हैं तो कम से कम एक दूसरे के लिए हम अच्छे बोल तो बोल सकते हैं, एक दूसरे को गुड विशेस तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? इसमें तो कोई खर्च नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो चले हम एक दूसरे को गुड विशेस देंगे। एक बार प्लीज खड़े हो जाएंगे सभी अपने स्थानों पर, प्लीज अपने स्थानों पर खड़े होंगे।
और खड़े होकर के एक दूसरे को जो आपके बगल में है, आपके पीछे हैं, आपके आगे हैं, उन्हें आप शुभकामनाएं दें, ग्रीट करें कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो, खूब उन्नति करो। प्लीज प्लीज स्टार्ट करें, एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, अगल बगल वाले को, पीछे वाले को, प्यार से गले लग सकते हैं, प्यार से मिलें। आगे वाले से, पीछे वाले से सबसे मिलिए, एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत उन्नति करो, आपके जीवन में सुख ही सुख हो, शांति ही शांति हो। ग्रीट करें एक दूसरे को, दो तीन चार पांच जितने लोगों को हो सकता है आप ग्रीट करें एक दूसरे को। किया ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। बैठे अपने स्थानों पर। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? हाँ, तालियां जरूर बजा सकते हैं। थोड़ी देर में हमने आधे मिनट, एक मिनट हमने अपने पड़ोसी के लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, हमने उन्हें शुभकामनाएं दी, उन्हें हमने गुड विशेस दिए कि आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, आगे बढ़िए, मेरी दिल की दुआएं हैं आपको, मेरी दिल की शुभकामनाएं हैं। हमने दिल से जब ग्रीट किया, हमें कैसा फील हुआ? आनंद, जो किसी दुकान में नहीं मिलेगा। आप बिलासपुर से आए हैं, मुंबई से आए हैं, पंजाब से आए हैं, जिंद से हैं, सभी जगहों से आप लोग हैं, क्या वहां कोई ऐसी दुकान है जहां पे खुशी मिलती हो कि भाई लो 1,000 रुपए और मुझे 100 ग्राम खुशी दे दो, लो जी 5,000 रुपए और मुझे 500 ग्राम शांति दे दो, है कोई ऐसी दुकान? नहीं। लेकिन हमने ये फील किया, अभी हमने फील किया, जब हमने एक दूसरे को ग्रीट किया, जब हमने एक दूसरे को बहुत अच्छे से शुभकामनाएं दी, दिल गदगद हो गया, दिल प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। ये है बांटने से बढ़ना। इसलिए कहते हैं अपने लफ्जों के द्वारा भी, अपनी वाणी के द्वारा भी हम प्रसन्नता दें, प्रोत्साहित करें दूसरों को, मधुर बोल बोलें, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले बोल बोलें, दूसरों को सुख देने वाले बोल बोलें, दूसरों को वरदान देने वाले बोल बोलें, कर्कश नहीं। हम कोयल को पसंद करते हैं, कौवे को नहीं। दोनों का रंग काला है लेकिन हम कोयल को पसंद करते हैं, राइट? क्योंकि वो मीठा बोलती है, मधुर बोलती है। और कौवा आपके घर के मुंडेर पे आके बैठ गया तो आप झाड़ू लेके दौड़ पड़ती हैं कि भाग जा यहां से, यहां तेरे लिए यहां कोई जगह नहीं है। और वैसे भी कहते हैं कौवा यदि छत पे बैठ गया तो कोई मेहमान आने वाला है ना? और भाई आज वैसे भी महंगाई का जमाना है, हम इतने व्यस्त रहते हैं, और यदि मेहमान आ गया तो इसलिए कौवा तू भाग जा, राइट? कोयल कौवा दोनों में से हम कोयल को पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ उसकी मधुरता, उसकी वाणी। क्या ऐसी वाणी हम अपनी नहीं बना सकते? कहते वाणी को वीणा बनाइए ताकि उससे संगीत उत्पन्न हो और आपके आसपास के माहौल में खुशी घुल जाए। अपनी वाणी को बाण मत बनाइए ताकि उस हृदय पे चुभ जाए। कहते हैं ना कि तलवार का घाव एक बार भर सकता है लेकिन वाणी का घाव नहीं भरता। कि तुमने ना 20 साल पहले ना इस बंदे ने ना मुझे ऐसा कहा था, याद रहता या नहीं रहता? होता है। जो इंसल्ट वाली बात हम कर रहे थे, हम बहुत कोशिश कर लेते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज एक दाग छोड़ जाती है। और जब कभी वो घटना, वो बात याद आती है या वो बंदा सामने आता है, हमें याद आ जाती है किसने ऐसा कहा था, तो वाणी घाव दे जाती है। इसीलिए हम किसी को घाव ना दें, सुकून दें। जब सुकून देंगे, शांति देंगे, खुशी देंगे, वो रिटर्न में मिलेगा बिकॉज ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जो चीज आप देंगे वो चीज आपको मिलेगी। ये न्यूटन का ही थर्ड लॉ नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है सब चीजों के लिए। इस संसार में जो चीज आप छोड़ रहे हैं, दे रहे हैं, वो रिवर्स होकर 5 गुना 10 गुना होकर आपके पास आएगी। यदि आप दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि सुकून से आप नहीं सो पाएंगे। इसीलिए हम सुख दें, शांति दें, आनंद दें अपनी वाणी के द्वारा, युक्ति के द्वारा भी। एक ज्योतिषी थे, एक राजा के पास आए। अब राजा ने अपना हाथ दिखाया कि देखिए तो ज्योतिषी जी कि मेरे हाथ में क्या है। ज्योतिषी ने देखा और कहा कि महाराज आपकी हाथ की रेखाएं कह रही हैं कि आपका पूरा परिवार आपकी आंखों के सामने ही मर जाएगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मेरा परिवार बाद में मरेगा ज्योतिषी जी, पहले आप मरेंगे। ले जाओ इसको जेल में और कल सुबह इसको फांसी पे चढ़ा देना। उसको दूसरे दिन फांसी पे चढ़ा दिया गया।
अब एक मास के बाद दूसरे ज्योतिषी महोदय आए, उस वहां से गुजर रहे थे, राजा ने कहा कि लेके आओ उस ज्योतिषी को। अब दूसरे ज्योतिषी ने भी हाथ देखा, अब हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं क्या? वो तो वैसे ही रहेंगी। हाँ, योग से, मेडिटेशन से हाथ की रेखाएं जरूर बदलती हैं, और वो बदल सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, ये ताकत मेडिटेशन में है। लेकिन उस राजा ने दिखाया तो हाथ की रेखाएं वहीं की वहीं थी। अब वो ज्योतिषी क्या करे? चुप रहेगा तो भी मरेगा, बोलेगा तो भी मरेगा, इधर कुआं और इधर खाई, क्या करें? यदि खुदा ना करे, फिर से मैं आपको ला रहा हूं, यदि आप उस ज्योतिषी की जगह होते, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती, आप क्या करते? हां जी, इधर से जी। हां जी, 7 दिन में आपका परिवर्तन, बात तो वही हो गई मेरे भैया, 7 दिन में मरे या 1 दिन में मरे या 1 महीने में मरे? वो कहेगा अच्छा 7 दिन में, ठीक है, चल तू 7 दिन से पहले तू कल मर। अच्छा और क्या? हाँ जी आइए प्लीज सर जी। हाँ जी, हाँ ये माइक में बोलना चाहते हैं जी, इनके लिए तालियां बजाएं सर।
अगर मैं ज्योतिष होता तो मैं राजा को ये बोलता, महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं, पूरे परिवार में आपकी आयु सबसे ज्यादा है।
बहुत सुंदर सर। उस ज्योतिषी का आंसर यही था, शायद पिछले जन्मों में सर आप ही तो नहीं थे वो दूसरे ज्योतिषी का। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ पीछे से आगे आए कि मुझे लगा कि संभवतः आप ही रहे हो वो दूसरे ज्योतिषी। उस दूसरे ज्योतिषी ने भी यही बात कही, हाथ देख करके, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में ये कहते हैं कि बात ऐसी करो कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। उसने भी यही कहा कि महाराज आपकी हाथ की रेखाएं तो बड़ी जबरदस्त हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, आपकी आयु आपके पूरे परिवार से ज्यादा लंबी है। बात वही, तरीका अलग। इसीलिए कहते हैं कि एक छोटे से बच्चे को, 2 साल के बच्चे को बोलना सीखने के लिए 2 साल लगते हैं, 2 साल में वो बोलना सीख जाता है। लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र बीत जाती है। इसीलिए ये चीज हमें जरूर ध्यान में रखना है कि हम अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को सुकून अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि इस वाणी के द्वारा या तो हमें तख्त भी मिल जाता है या हम तख्ते पर भी पहुंच सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल से हमने देखा, दूसरे ज्योतिषी को राजा ने बहुत सारे हीरे मोती इनाम देकर के विदा किया कि तुमने तो बहुत अच्छा बताया, वो पहले ज्योतिषी ने तो पता नहीं क्या बोल दिया था, बात वही थी। लेकिन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी वाणी के द्वारा भी ये जरूर करें। अच्छा, एक सहयोग की बात है मित्रों, जो कोऑपरेशन की बात है, देने की बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहां 1990 में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। उसमें सारे वर्ग के लोगों को शामिल किया गया और ये पूछा गया कि संसार सुखमय कब हो सकता है, संसार स्वर्ग कब बन सकता है। तो सभी ने मिलकर के जो एक बात लिखी, वो एक बात एसेंस रूप में यही थी कि जब हम एक दूसरे को सहयोग देंगे तभी हम संसार को स्वर्ग बना सकते हैं। बिना एक दूसरे के सहयोग के संसार को स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी खुशी के लिए भी और संसार को स्वर्ग बनाने के लिए भी एक दूसरे को कोऑपरेट जरूर करें। एक टीचर थे, स्कूल के जो बच्चे थे 50 बच्चे, उन 50 बच्चों को कहा कि एक स्लिप लो और स्लिप में नाम लिखो, अपना अपना नाम लिखो। उन सभी बच्चों ने अपना अपना नाम लिखा। नाम लिखने के बाद एक बॉक्स रखा गया, उसमें सारी पर्चियां डाल दी गई। अब टीचर ने कहा कि सभी इकट्ठे हो जाओ उस बॉक्स के पास और कहा कि अब जैसे ही मैं 1 2 3 कहूं सभी इसमें अपना हाथ डालना और ढूंढना अपने अपने नाम की पर्ची। उन सारी पर्चियों को मिक्स कर दिया गया था। अब जैसे टीचर ने 1 2 3 कहा सारे बच्चे टूट पड़े, सब ने पर्चियों में हाथ डाला, इधर निकाला उधर निकाला, किसी को अपने नाम की पर्ची नहीं मिली, कई पर्चियां फट भी गई। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। सर ने कहा क्या किसी को अपने नाम की पर्ची मिली? तो बच्चों ने उदास होकर कहा नहीं सर नहीं मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर से अपने अपने नाम की पर्ची लिखो। सबने लिखा एक बॉक्स बनाया गया, बॉक्स में डाल दिया गया, सबको मिक्स कर दिया गया। अब टीचर ने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन चेंज किया, कहा वैसा करो जैसे ही मैं 1 2 3 कहूं वैसे ही बॉक्स में हाथ डालना, और जो पर्ची निकले उसमें जिसका नाम हो उसका नाम बोलना और उस व्यक्ति को, उस बच्चे को उसके नाम की पर्ची दे देना। जैसे ही 1 2 3 कहा उन्होंने, सबने हाथ डाला, एक एक पर्ची हाथ में आई, उन्होंने नाम पढ़ा, जिसके नाम की पर्ची थी उसे उन्होंने दे दी। 2 मिनट में सबके नामों की पर्ची उनके उनके हाथों में थी। टीचर ने उन्हें यह सिखाया कि हम केवल अपने लिए ना सोचें। जब हम केवल अपने लिए सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कैसे सुकून हो, मेरा लाइफ कैसे कंफर्ट से भरा हुआ हो, जब हम केवल अपने लिए सोचते हैं हम सुखी नहीं रह पाते। लेकिन जब हम औरों के लिए सोचते हैं तो हम जरूर जीवन में सुखी होते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि खुशी की तलाश में उम्र बीत गई लेकिन खुशी नहीं मिली। बाद में जाके मुझे पता चला कि खुश तो वो लोग थे जो खुशी बांट रहे थे। इसीलिए हम खुशी जरूर बांटते चलें। यह हमें कोऑपरेशन सिखाता है कि कैसे आप एक दूसरे को कोऑपरेट करें तो खुश रह सकते हैं। कुछ 7-8 लोग ऊपर आ जाएंगे मंच पे, 7-8 लोग जो भी सामने बैठे हैं प्लीज। अभी जो पर्चियां टीचर ने बांटी थी वो पर्चियां मेरे हाथ में भी हैं, तो हम लोग छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। भाई जो भी आ रहे हैं उनके लिए तालियां जरूर बजा लें, जोरदार तालियों से हमारे जो भाई आ रहे हैं मंच पे उनका अभिनंदन करेंगे। केवल 8 आ जाइए मंच पे सामने, केवल 8। अच्छा हमारे भाई ही ज्यादा हो गए हैं, ओके आ जाइए। 2 बहनें आ जाएं, 6 हमारे भाई आ जाएं। आइए सिस्टर आ जाइए, प्लीज प्लीज कम आइए। हम बात कर रहे हैं मित्रों कोऑपरेशन की, सहयोग की, राइट। अब इस सहयोग में कैसे एक सुंदर सी लहर पैदा होती है या संगीत पैदा होता है, उस चीज को मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं। एक लाइन में खड़े हो जाएंगे आप सब, आइए एक लाइन में। अच्छा कुछ ज्यादा हो गया, आइए सिस्टर्स आइए एक लाइन में खड़े हो जाइए, एक लाइन में, ओके ये लीजिए। मैं आप लोगों को जो भी हमारे सामने हैं इन्हें मैं एक स्लिप दे रहा हूं, एक एक स्लिप है। शायद हमारी बहनें रहेंगी, आप लोग यहीं खड़े रहें, ओके। अब आप लोग स्लिप खोलिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है। अच्छा 2 हैं, हाँ एक बहन हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आइए। हाँ ये स्लिप में कुछ लिखा हुआ है, खोले इसे पढ़ेंगे आप। पढ़ लिया आप लोगों ने, ओके। अब स्लिप में एक ही शब्द लिखा हुआ है लेकिन इस शब्द को हम कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जो पीछे आप देख रहे हैं, कोऑपरेशन मेक्स ब्यूटीफुल म्यूजिक। जब हम सहयोग की बात करते हैं तो एक सुंदर संगीत का निर्माण होता है। कभी भी एक इंस्ट्रूमेंट से संगीत का निर्माण नहीं होता, बहुत सारी जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे मिलकर के संगीत का निर्माण होता है, राइट। अब जो चीज इसमें लिखी हुई है राइट, उसे आप एक बार बोलेंगे, आप 2 बार बोलेंगे, आप 3 बार, आप 4 बार, आप 5 बार, आप 6 बार, आप 7 बार और आप 9 बार बोलेंगे, ठीक है, ओके ठीक है, क्लियर है। जो चीज एक ही अक्षर एक ही शब्द लिखा हुआ है लेकिन इसे आप एक दो, आप एक बार, एक दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बोलेंगे, ओके शुरू करें। 1 2 3 जी, भाई तालियां इन सबके लिए। एक बार फिर से हम इस हंसी को जरूर कोऑपरेशन वाले सुनना चाहेंगे जी।
हा हा हा,
बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियों से इनका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपने स्थान पर बैठे। मैं एक चीज, आप लोग अपने स्थान पर बैठे, बहुत बहुत शुक्रिया। कोऑपरेशन की बात मित्रों मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता था। इन सबके हाथ में केवल एक स्लिप था, एक ही शब्द लिखा हुआ था हा, लेकिन जब इन सब ने मिलकर के इसे रिदम के साथ एक दूसरे को सहयोग देते हुए इस बात को रखी, वो हंसी का निर्माण करती है। सहयोग सचमुच हमारे माहौल में खुशी घोल देती है। इस चीज को, इस संगीत को हम अपने जीवन में अवश्य अनुभव करना है। लास्टली जो मैं डी आपके सामने रखना चाहता हूं, द लास्ट वन इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट एंड डिटैचमेंट का भाव यह है
कि हम अपने कर्मों में कई बार बहुत ज्यादा लिप्त हो जाते हैं, अपने कर्मों के साथ हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं, कामना रखते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए। और जब हम कोई कामना रखते हैं कोई कार्य करने के पश्चात, वो हमारी खुशी को छीन ले जाती है यदि वो वैसी नहीं होती तो। इसीलिए गीता में भी भगवान ने ये कहा है, कर्म कर और कर्म करने के बाद फल क्या कर, फल की चिंता मत कर, फल तू मुझे अर्पित कर दे। कर्म और फल दोनों जुड़े हुए हैं। यदि हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा परिणाम हमें मिलेगा ही, बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका बुरा परिणाम मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि आज संसार में बहुत सारे ऐसे बुरे लोग हैं जो बहुत सुखी हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। ये बात कई बार दिखाई तो अवश्य देती है, लेकिन यदि कर्मों के सिद्धांत को आप गहराई से समझें तो आप समझ सकते हैं कि वो वर्तमान में सुखी भले दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनका भविष्य अंधकारमय होता है। कईयों के यहां रेट पड़ रहे होते हैं और वो लोग जो बड़े दिखाई दे रहे हैं वो लोग बेचारे मुंह छुपाते फिरते हैं, होता है या नहीं होता, आप न्यूज देख सकते हैं। तो कर्म जो आप कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके साथ हमें डिटैच भी रहना है, क्योंकि डिटैचमेंट इज द की टू हैप्पीनेस, ये बात कही जाती है। डिटैचमेंट में स्पेशली हम कर्मों से डिटैच नहीं, लेकिन कर्म के जो परिणाम है या कर्म का जो फल है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे हमें डिटैच होने की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक बार अरस्तु से किसी ने पूछा कि खुशी का मूल मंत्र बता दीजिए छोटा सा, तो उन्होंने कहा कि यदि तुम खुश रहना चाहते हो हमेशा, एक चीज याद रखो और एक चीज भूल जाओ। याद क्या रखो, यदि किसी ने तुम्हारी भलाई की है, तुम्हें सहयोग दिया है, उस चीज को तुम याद रखो। और यदि तुमने किसी की भलाई की है, तुमने किसी का अच्छा किया है, सहयोग दिया है, उसे भूल जाओ। क्योंकि यदि तुम उसे याद रखते हो तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी तुम्हें सहयोग दे, वो भी तुम्हारे लिए वैसा ही करे। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को हमने बहुत लाड प्यार से पाला, बड़ा किया, अब बड़े होने के पश्चात यदि वो अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, यदि हमारी कामनाएं बहुत प्रबल हैं तो हम दुखी हो जाते हैं कि हमने इन्हें पाला पोसा बड़ा किया, अब ये तो हमारी कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं या हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें कामनाओं से मुक्त रहना सिखाती है और इसमें मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। लास्टली हम उस मेडिटेशन के पार्ट पे आते हैं जिस पार्ट के द्वारा डिटैचमेंट की जब हम बात करते हैं, तो डिटैच फ्रॉम द बॉडी एंड अटैच विद द सुप्रीम। हमें डिटैच होना है इस देह से या देह की दुनिया से और अटैच होना है उस सुप्रीम से। तो चलें एक सुंदर सा मेडिटेशन के साथ आज के सत्र को हम संपन्न करेंगे। मेडिटेशन के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठें आप, अपने अंतर की यात्रा हम एक सुकून के साथ, खुशी के साथ आज के इस सत्र से कुछ सीख कर अपने जीवन के लिए जा रहे हैं। हम उस यात्रा पे निकले थे जिस यात्रा पे हमने खुशी के बहुत सारे पहलुओं को देखा समझा, अब अंतर की ओर चलें। मैं ईश्वर की संतान, इस धरा पर परमात्मा ने मुझे सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए भेजा है। मैं अपने आत्म स्वरूप में सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। अब तक कस्तूरी मृग की तरह मैं भी सुख और आनंद की तलाश संसार में, सांसारिक चीजों में कर रही थी। अब मुझे बोध हुआ है, आत्मज्ञान मिला है,
कि मेरे आत्मस्वरूप में ही सुख और आनंद समाहित है। अपने अंदर उस असीम आनंद को अनुभव करें। देह से अलग अपनी आत्म स्थिति में मैं कितना सुकून और कितना आनंद अनुभव कर रहा। मेरे पिता परमात्मा आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं। तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूं? फील करें परमात्म शक्तियां परमात्म सुख और आनंद की जैसे मुझ पर बरसात हो रही है। मेरा तन मन इस आनंद में मग्न होता जा रहा है। सदा इसी आनंदित स्थिति में रहकर औरों को भी सुख और आनंद प्रदान करूंगा। सदैव इसी आनंदित स्थिति में रहूंगा, रहूंगी। अंतिम पंक्तियां कह के आपसे विदाई लूंगा। कहते हैं जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है। तो आप सबके आगे जिंदगी सिर झुकाती रहे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है, मंगल कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।